हृदय चैतन्य की कथा सुन करके बहुत प्रोत्साहित हुए थे दुखी, और अपने पिता से उन्होंने अनुमति पाकर ये उड़ीसा के नॉर्थ उड़ीसा में जो बंगाल को टच करता है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के पास में ही इनका घर था, तो वहां से अंबिका कालना जाने के उन्होंने बोला। तो इनके पिताजी ने कहा आप कैसे जाओगे अकेले अभी छोटे हो, तो कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। फिर इन्होंने बोला अच्छा प्रत्येक वर्ष यहां से बंगाल जाते हैं भक्त लोग, मैं उनके साथ चले जाऊंगा तो मैं सेफ भी रहूंगा। तो पिताजी ने अनुमति दे दी और ऐसे करके वो कुछ दिनों बाद अंबिका कालना पहुंच गए। और वहां पे जब गए तो इन्होंने हृदय चैतन्य के आश्रम के बारे में पूछा और वहां पे गए और सेवा करने लगे। और फिर हृदय चैतन्य ने जो है उन्हें अपना शिष्य बनाया और उन्हें नाम क्या दिया, कृष्णदास। कृष्णदास उन्हें नाम दिया, उनका नाम फिर ऐसे फेमस हो गया दुखी कृष्णदास के रूप में। और जो कृष्णदास थे ये हृदय चैतन्य के बहुत क्या बोलते हैं प्रिय शिष्य थे, सबसे प्रियतम शिष्य थे, क्योंकि बहुत ही नम्र थे और सबके इसीलिए वो वहां पे प्रिय बन गए क्योंकि अपने गुरु के भी इतने प्रिय थे। और कई वर्षों तक उन्होंने वहां से कुछ वर्ष समय तक सेवा करी और फिर हृदय चैतन्य से उन्होंने आज्ञा मांगी कि मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूं। ये एक कॉमन चीज है इन तीनों आचार्यों के जीवन के अंदर, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु के जीवन के अंदर, कि तीनों ने जो है महाप्रभु के जितने पार्षद हुए जो उस समय अपने भौमलीला में थे उनके उनका संग प्राप्त करने के लिए और महाप्रभु जो लीला स्थलियां थी वो दर्शन करने के बहुत उत्साहित थे। और हाँ एक बात और बताना भूल गए, बचपन से ही इन्हें चैतन्य महाप्रभु के नाम को सुनकर के बहुत उत्साहित हुआ करते थे, हालांकि महाप्रभु से मिले नहीं थे। और उस दौरान 500 वर्ष पूर्व आज से चैतन्य महाप्रभु हैं पूरे उड़ीसा और बंगाल में बहुत फेमस थे, घर घर के नाम थे चैतन्य महाप्रभु जो हैं। उस समय ऐसा था जो कल्चर था कि हर व्यक्ति जो है विशेषकर महाराज प्रताप रुद्र के शासन के दौरान जो है चैतन्य महाप्रभु हर घर के मतलब हर कोई उनकी पूजा करता था इस प्रकार से। तो बचपन से चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते ही थे। और तो फिर वो गए सब जगह और भी कई सारे तीर्थों पे गए, ये बनारस और अयोध्या और बहुत सारी जगह पे। नॉर्थ इंडिया में जनरली इतना ट्रैवल नहीं करते थे लेकिन इन्होंने ट्रैवल किया, बाकी संत इतना नहीं ट्रैवल करते थे। और वहां पे जब वो गए तो फिर एक साल लगभग तीर्थाटन करके वापिस आए। और जब वापिस आए तो हृदय चैतन्य ने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी, आप कहां जाओ, वृंदावन जाओ। और जीव गोस्वामी के निर्देशन में रह करके जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत और जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करो, उनसे शिक्षा प्राप्त करो। तो हालांकि ये हृदय चैतन्य का संग नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन फिर भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए ये वृंदावन चल पड़े। और वृंदावन गए तो ये बाकी अपने दो मित्रों से और महाप्रभु की इच्छा पूरी हो रहे थे। जीव गोस्वामी इनको देख करके बहुत प्रसन्न हुए। और उस दौरान कृष्णदास कविराज और एक और क्षण गोस्वामी से एक गोस्वामी और उस समय जीवित थे, शायद गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इन दोनों को जब पता लगा कि इस प्रकार से कृष्णदास जो कि गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य के शिष्य हैं वो वृंदावन आए हैं तो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें जीव गोस्वामी की ओर जो है लेके गए उनको। और जीव गोस्वामी को देख के बहुत खुश हुए और उनका और अधिक इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि महाप्रभु की जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली है, क्योंकि अब तीनों साथ मिल गए थे, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और अभी कृष्णदास, तीनों आ गए थे वृंदावन के अंदर। और फिर जीव गोस्वामी श्यामानंद पंडित दुखी जो हैं और ये तीनों जीव गोस्वामी के निर्देशन में रहकर सभी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत और शास्त्रों को पढ़ने लगे और उसमें बहुत जल्दी निपुण हो गए। और इनकी सेवा थी कि जहां राधा और कृष्ण जिस कुंज के अंदर लीलाएं करते हैं उस कुंज का रोज मार्जन करते थे ये, और बहुत ही नम्र थे और रोज बहुत सावधानी से मार्जन करते थे। तो ऐसे ही उस कुंज के अंदर राधा कृष्ण एक बार लीला कर रहे थे। और देखिए ये लीला, इनकी लीला जब सुनेंगे तो सबसे अधिक एक चीज की आवश्यकता है, केवल जिसके अंदर श्रद्धा होगी वही समझ सकता है इस लीला को, बाकी को तो लगेगा कुछ अलग ही, एक फेरी टेल चल रहा है या बहुत अजीबोगरीब लीला लगेगी कि ऐसा भी कभी होता है। लेकिन जिसको आध्यात्मिक जगत में और भगवान की अद्भुत लीलाओं में विश्वास है और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में अटूट श्रद्धा है उन्हीं को ये जो है लीला बहुत रुचिकर, बहुत ही मनोहर और रुचिकर लगेगी। कंट्रोवर्शियल भी है बहुत ऐसा करके, लेकिन तो फिर राधा रानी और सभी गोपियां जो हैं वहां पर नृत्य कर रही थी और कृष्ण नृत्य कर रहे थे, और जो नृत्य करते 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 जो नृत्य खत्म होने लगा तो राधा रानी ने क्या किया, गलती से या फिर जानबूझ के अपना नुपुर वहां पे गिरा दिया। और अगले दिन जब कृष्णदास सफाई करने आए तो उन्हें बहुत ही सुंदर जो है नुपुर मिला उस कुंज के अंदर, कनक कुंज जगह बोलते हैं, और उस पूरे कुंज का जो है एफलजेंस जो है मतलब पूरा कुंज प्रकाशमान हो चुका था। और जीव गोस्वामी ने उन्हें रागानुगा भजन में भी प्रशिक्षित किया था तो ये करते थे, तो ये समझ गए बिल्कुल नुपुर को देखते ही कि इस जगत का नुपुर नहीं है ये। तो उन्होंने उसे क्या किया, छुपा करके रख लिया, उसको दर्शन किया, सर से लगाया और समझ गए ये कोई साधारण नुपुर नहीं है। और जाके एक जगह उन्होंने गड्ढा खोद करके धरती के अंदर दबा के रख दिया इसे। और फिर राधा रानी ने ललिता देवी को बोला कि मेरा नुपुर कल गिर गया था कुंज के अंदर, आप जाओ लेके आओ। तो ललिता देवी एक वृद्ध ब्राह्मणी का वेश धारण करके आती हैं और उस कुंज के अंदर नुपुर ढूंढ रही होती हैं। तो वहां उन्हें श्यामानंद पंडित मिलते हैं, दुखी कृष्णदास दुखी मिलते हैं, और वो पूछती हैं कि क्या आपको कोई नुपुर प्राप्त हुआ है, तो बोलते नहीं मुझे कोई नुपुर प्राप्त नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला नहीं वो नुपुर मेरा है, यहां आपको प्राप्त हुआ होगा। तो उन्होंने बोला नहीं ये हो नहीं सकता कि इस जगह का नुपुर प्राप्त है ये, तो मैं वो नुपुर मेरे को प्राप्त हुआ है चलो, लेकिन मैं उसे लेकर के जाऊंगा और आप अपने घर, उन्होंने कोई एक गांव बताया था इस गांव से मैं आई हूं। तो बोला ठीक है वहां पे चलते हैं, आपके पड़ोसियों से और घर वालों से पूछेंगे आपका नुपुर है कि नहीं है। तो ललिता देवी ने बोला कि नहीं, तो बोला क्यों, तो उन्होंने बोला क्यों, तो वो ललिता देवी अपना जो है वेश नहीं प्रकट करना चाहती थी उनके सामने दिव्य स्वरूप, तो उन्होंने जो है इनको बोला, तो श्यामन दुखी कृष्णदास ने बोला उन्हें कि मैं आपको नुपुर दे दूंगा लेकिन ये बात मैं आपको बता देता हूं कि ये नुपुर जगत का नहीं है, तो आप कृपया करके अपना जो असली आइडेंटिटी है, जो रियल आइडेंटिटी है वो आप बताइए कि आप कौन है। तो उन्होंने फिर बोला कि वो नुपुर राधा रानी का है और मैं ललिता ठाकुरानी हूं, मैं ललिता सखी हूं, तो आप दे दो। उन्होंने कहा नहीं आपको प्रूफ देना पड़ेगा ऐसा करके। तो ललिता देवी बोली कि अगर मैंने आपको अपना असली स्वरूप दिखाया तो आप देख नहीं पाओगे। तो उन्होंने फिर एक आर्ग्यूमेंट दिया, नहीं यदि आप दृष्टि देंगे तो मैं देख सकता हूं। तो राधा रानी ने फिर उन्हें अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, ललिता देवी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और जो है इन्होंने वो, और उस स्वरूप को देखते ही राधा रानी के ललिता देवी के स्वरूप को देखते ही श्यामन दुखी जो बिल्कुल मूर्छित होकर कुछ बोल नहीं पाए, रोने लगे बिल्कुल। और तब उन्होंने वो नुपुर दिया और ललिता देवी ने क्या किया, उस नुपुर को लिया और उन्हीं के सर पे लगा दिया ऐसे करके, और बोला कि ये राधा रानी के चरण चिन्ह जो है आपके सर पे हमेशा इंप्रेशन रहे। तो ऐसा उनका श्यामानंदी वैष्णव तिलक भी ऐसा होता है, वैसे बनाते हैं बीच में एक डॉट होता है। तो बहुत आर्टिस्टिक वे फिर ललिता देवी ने जो है वो नुपुर को रखा, उनके उस पर रखा और बोले आज आपका नाम क्या है, श्यामानंद। श्यामानंद मतलब जो श्यामा श्रीमती राधा रानी को आनंद दें, उनका नुपुर खोज करके दिया आपने। और फिर और उनका पूरा जो शरीर था वो बिल्कुल गोल्डन एफलजेंस स्वर्णिम हो गया ऐसे करके। और ललिता देवी ने फिर बोला कि अभी आप ये लीला किसी को मत बताना लेकिन आप जीव गोस्वामी के निर्देशन में रहकर भजन करो। ललिता देवी ने उन्हें बोला कि और ये लीला केवल उन्हीं को बता सकते हो, आप जीव गोस्वामी से आप शेयर कर सकते, उनको बताइए और उन्हीं के अंतर्गत रह के जो है ये रागानों का भजन करिए और आपको सिद्ध देह प्राप्त होगा। और फिर ललिता देवी ने उन्हें एक मंत्र प्रदान किया जो ललिता देवी खुद राधा रानी के स्वरूप को देखने के लिए जप करती हैं, तो ये उसका भी जप किया करते थे। अब आप जीव गोस्वामी को जाके बताना और किसी को मत बताना। और इन्होंने फिर जीव गोस्वामी देखा, पूरा शरीर उनका स्वर्णिम और ये तिलक अलग सा इंप्रेशन बना हुआ है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ आपके इस प्रकार से। तो उन्होंने बोला नहीं एक सपना आया था, और पहले तो उन्होंने एक बार तो सपने ही बोला, फिर उन्होंने बोला नहीं आपके सर पे तिलक कैसा है, और दो प्रश्न और चार प्रश्न कुल उन्होंने पूछे ऐसे करके। तो फिर इन्होंने पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसे हुआ और जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे। लेकिन अब उनका और वो फेमस हो गए पूरे ब्रज के अंदर, हालांकि किसी को सच्चाई तो नहीं पता थी जीव गोस्वामी के अलावा, लेकिन पूरे ब्रज में वो फेमस हो गए श्यामानंद प्रभु के रूप में। और ये खबर कहां पहुंची, अंबिका कालना में हृदय चैतन्य के पास कि ऐसे मेरे शिष्य ने जो तिलक बदल लिया है, क्योंकि जो तिलक होता है ये संप्रदाय की निशानी होती है ऐसा है, तो किसी व्यक्ति तिलक नहीं बदलना चाहिए इस प्रकार से, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग तिलक होते हैं। तो वहां पे तो उनको पता तिलक बदल लिया है और जीव गोस्वामी के अंतर्गत रह के उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया है। तो देखिए, ये गौड़िया वैष्णव आचार्य के अंदर एक परंपरा है, यदि एक आचार्य ने उनको दीक्षा दी है और वो बिल्कुल सही स्टैंडिंग के अंदर है, यदि किसी ने गुरु बनाया है तो उस व्यक्ति को कभी दूसरे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। हालांकि शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन में अपनाने के लिए उन्हें अपने दीक्षा गुरु से उसको प्रमाणित करना चाहिए, लेकिन यहां तो ललिता देवी ने खुद ही उनको एक प्रकार से नाम दिया है और ये सब हुआ। तो लेकिन हृदय चैतन्य को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने कुछ प्रमुख शिष्यों को, शायद 5 शिष्यों को जो है वृंदावन भेजा, बोले जाके देख के आओ क्या ये सच है या खाली अफवाह है। तो वो गए और उन्हें बोला कि लेकिन जीव गोस्वामी पर क्रोध मत करना, वो बहुत उन्नत वैष्णव हैं, तो लेकिन खोजबीन करना। तो वो वहां पे गए और जीव गोस्वामी ने सच नहीं बोला उन्हें, उन्होंने एक क्या बोलते हैं कवर्ड झूठ बोला, कवर्ड सच बोला। उन्होंने बोला कि ऐसे सपने में जो है इनके गौरीदास पंडित, ये हृदय चैतन्य आए थे और उन्होंने ही उनको ये नाम दिया श्यामानंद, उनकी कृपा से इनको। हाँ, क्योंकि ये मुख्य बात थी, जब जीव गोस्वामी को दुखी कृष्ण या श्यामानंद प्रभु ने ये वर्णन किया तो उन्होंने बोला कि हृदय चैतन्य की कृपा से ये सब प्राप्त हुआ है मुझे, ऐसा करके। तो उनको हमेशा कभी भी ऐसा नहीं था कि अपने गुरु के वो अलग हो गए थे या गुरु के जो है लॉयल नहीं थे या उनकी श्रद्धा नहीं थी। तो जीव गोस्वामी को तो ये मालूम था, लेकिन जीव गोस्वामी ने बोला इनके सपने में ऐसे आए थे और उन्होंने इस प्रकार से उनका नाम परिवर्तित किया। और तो और उन्होंने कुछ घटना वर्णन किया, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, मैं लिख के नहीं लेके आया, कंप्यूटर में था लेकिन वो प्रिंट आउट नहीं मिला। तो जीव गोस्वामी ने ऐसा वर्णन किया और ये सुनकर के सभी जो शिष्य थे वो बिल्कुल वो हो गए, शांत हो गए कि हाँ जीव गोस्वामी सच बोल। जीव गोस्वामी ने कहा आप चाहो तो पूछ सकते हो और लोगों से, उन्होंने बोला नहीं आपके शब्द सफिशियंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हम जो है श्यामानंद प्रभु से फिर भी पूछेंगे, दुखी कृष्णदास से, कृष्णदास से। तो उन्होंने पूछा उनसे और उन्होंने भी यही बात बोली कि सपने में ऐसे आए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने जीव गोस्वामी को बोला आप क्या करो लिख के दे दो ये घटना ऐसे करके, तो हम जो है हृदय चैतन्य को जाके दिखाएंगे। तो जब हृदय चैतन्य पढ़ा तो उन्होंने बोला कि नहीं, जीव गोस्वामी चीटिंग कर रहे हैं हमको, है ना, आपको लगेगा अभी सब नित्य सिद्ध पार्षद हैं लेकिन उनके बीच में कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला मैं खुद जाऊंगा। तो फिर वहां से वो पूरे 64 महंत और बहुत सारे भक्त और गौरीदास पंडित के भी कई शिष्य सब गए वृंदावन की ओर, और जो हृदय चैतन्य थे उनको बहुत क्रोध आया हुआ था। तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला तुम्हारा तिलक भी नकली है और तुम्हारा ये जो नाम है ये भी नकली है, मैं खुद अपने हाथों से इन्हें मिटाऊंगा और मैं तुम्हारा नाम तुम्हारी छाती पर लिखूंगा श्यामानंद और मैं मिटा दूंगा उसे, ऐसे करके। और यदि ऐसा हुआ कि तुम्हारा तिलक मिट गया तो क्या होगा, इसका मतलब तुम झूठे हो, और तुम झूठे हो तो मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मेरे ऊपर भी धिक्कार है, मैं अपना ही प्राण त्याग दूंगा, उन्होंने बोला ऐसा करके। तो सभी 64 महंत तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके, और इन्होंने बहुत उनके सबके आवभगत किया, सेवा किया, और उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल भी मैं आपके जो हूं बिल्कुल स्वामी भक्त हूं, मैं आपका शिष्य हूं। तो फिर भी सभी 64 महंत ने उनसे पूछा अच्छा बताओ आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने बोला मेरे गुरु हृदय चैतन्य है। तो देखो अगर ये बात झूठ हुई, अगर तुमने अभी तक झूठ बोला है ये सब लीला को तो मान जाओ हम तुम्हारे सारे पाप धोने में सक्षम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये बात झूठ सिद्ध हुई तो फिर देख लेना, तो आप समय लेके उत्तर दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे को आप कुछ समय दो। और हृदय चैतन्य ये श्यामानंद प्रभु ने क्या किया, ये गए समाधि के अंदर और जो ललिता देवी ने उनको मंत्र दिया था वो मंत्र याद करने लगे, और जब करने लगे तो इन्होंने अपने आप को जो है आध्यात्मिक जगत में जहां श्रीमती राधा रानी थी कनक कुंज वहां पे पाया, और वहां पे ये कनक मंजरी के रूप में जो है रो रहे थे और ललिता देवी को याद कर रहे थे। तो वहां पे ललिता सखी की कुछ और मंजरियां वहां पे आई और पूछा आप कौन हो, तो बोला मैं कनक मंजरी हूं, और उन्होंने बोला मैं बहुत परेशान हूं, ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी घटना का वर्णन किया। उनको तो हालांकि ब्रज की भाषा में बताया कि मेरा इससे विवाह हुआ है और मेरे पति, मैं एक दिन पूरा ललिता देवी के साथ में थी और मेरे पति इसलिए मेरे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे करके। तो जब सभी मंजरियों ने ललिता सखी को जाके बताया तो बोला मैं राधा रानी के लिए अभी जो हूं तांबूल की सेवा कर रही हूं, पान की सेवा कर रही हूं, तो मैं तो छोड़ के नहीं जा सकती, तो आप उनको इधर ले आओ। तो कनक मंजरी को लेके गए और तब पहली बार उन्होंने किसके दर्शन किए, श्रीमती राधा रानी के, ऐसे करके। तो जीव गोस्वामी तो जानते थे कि ये सब क्यों हो रहा है वास्तविकता में, ताकि जो है श्यामानंद प्रभु को श्यामती राधा रानी के दर्शन हो सके। ये सारी लीला राधा रानी ने ऑर्केस्ट्रेट करी थी इस प्रकार से, लेकिन उनके रूप को देखते हुए ये कनक मंदिर सब भूल गए अपने दुख को और देखते रहे बिल्कुल राधा रानी के स्वर्णिम और अद्भुत सुंदरता को, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। और जब वो देखने लगी तो उन्होंने फिर, और ललिता सखी भी उनको देख के बहुत खुश हुई, और फिर उन्होंने राधा रानी को अपना पूरा वर्णन किया कि मैं बहुत कंफ्यूजन के अंदर हूं, कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ललिता सखी ने तिलक दिया था, नाम दिया है, और मेरे शिष्य गुरु हैं हृदय चैतन्य, और फिर भी इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो राधा रानी ने सब सुना और किसको बुलाया फिर, सुबल सखा का। तो सुबल वहां पे आए और उन्होंने सब सुना तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, जो है मैं ही गौरीदास पंडित हूं और मेरे शिष्य हृदय चैतन्य है। तो जब वो मिटाने लगेंगे तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से तिलक बनाया और उनका नाम लिखा श्यामानंद ऐसे करके। तो बोला कि तुम्हारी छाती पर नाम लिखेंगे और तो तुम बोल देना, और ये तिलक बनाएंगे तो तुम बोल देना कि गौरीदास पंडित ने आके दिया है ऐसा करके। और जब वो मिटाने लगे साबुन वगैरह कुछ लेके ऐसे करके, तो आप मेरे को याद करना, क्या होगा ये और भी अधिक स्ट्रांग होते जाएगा, जो ये तिलक और उनका जो नाम है ये और भी स्ट्रांग होते जाएगा। मैं बोला ठीक है, और फिर ये जो है एक्सटर्नल, और ये इतने गाढ़ समाधि के अंदर थे तो जितने महान संत वहां एकत्रित हुए थे पूरे लोग, वो भी सब हैरान थे बिल्कुल ये देख करके, और केवल जीव गोस्वामी के अलावा और कोई नहीं देख पा रहा था क्या हो रहा है। तो जैसे जीव गोस्वामी को देख लिया कि अभी ये लीला खत्म होने वाली है, उन्होंने बहुत जोर से कीर्तन करना शुरू किया वहां पर, सब भक्तों को बोला। तो कीर्तन शुरू किया तो उनकी जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है वो भंग हो गई और बाह्य चेतना में आए, तो उन्होंने बोला मेरे स्वामी हृदय चैतन्य है और आप चाहो तो तिलक मिटा सकते हो और नाम मिटा सकते हो। तो उन्होंने नाम को लिखा और मिटाने लगे, तो पहले मिटाने लगे तो मिटने लग गया वो, तो ये गौरीदास पंडित को याद करने लगे और ललिता ठाकुरानी को याद करने लगे, तो तिलक और ज्यादा तेजी से जो है निकल के आने लगा। पूरा कोशिश किया लेकिन तिलक मिटा नहीं, तो जो है गौरीदास जो हृदय चैतन्य थे वो बहुत खुश हुए अपने शिष्य की जीत के ऊपर ऐसे करके कि ये बोनाफाइड है। तो इस प्रकार से, और श्यामानंद रोहित बहुत विख्यात हुए और हृदय चैतन्य भी, और ये सब राधा रानी की कृपा और गौरीदास पंडित और सुबल सखा के और ललिता देवी के इंटरवेंशन से ये सारी जो कथा, ये जो फर्स्ट टाइम है एपिसोड है, ये सॉल्व हो गया। लेकिन अभी भी एक समस्या थी, यहाँ पे समस्या ये थी कि गौरीदास पंडित सुबल सखा हैं और ये साख्य भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके शिष्य हृदय चैतन्य वो भी साख्य भाव की पूजा करते थे और वही प्रचार करते थे, लेकिन श्यामानंद प्रभु ये गोपी भाव के अंदर या मंदिरी भाव के अंदर सेवा करते थे। तो गौरीदास पंडित को थोड़ा डाइजेस्ट नहीं, ये हृदय चैतन्य को थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता था ऐसे करके। तो हृदय चैतन्य को फिर भी, और क्या हुआ तो उस रात के रात में या ऐसा, हाँ एक टाइम कि वृंदावन के अंदर ये रासलीला का कुछ एक्टर्स जो हैं, कुछ लोग वो कर रहे थे, मतलब नृत्य कर रहे थे इस प्रकार से, मतलब राधा रानी राधा कृष्ण की लीलाओं को ऐसा प्रस्तुत कर रहे थे। तो गौरीदास पंडित और सारे उनके शिष्य वो सब ब्रज के सब दर्शन किए देखते हुए वापिस जाने वाले थे, और श्यामानंद प्रभु वहां पे थे, तो ये सब साख्य भाव के अंदर थे, तो उनको तो उतना रासलीला से उतना ऐसा लेना देना बहुत ज्यादा नहीं था। तो लेकिन तो सब थोड़ी देर में चले गए, लेकिन श्यामानंद प्रभु जो थे उनको बहुत दिव्य रुचि थी इसके अंदर, तो ये वहां पे देखने लगे, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, सब चले गए लेकिन श्यामानंद प्रभु वहीं पर रहे ऐसा करके, और उन्हें राधा कृष्ण की लीला का स्मरण होने लगा। तो गौरीदास जब हृदय चैतन्य ने ये देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो सोच रहे थे कि मैं अपने शिष्य को जो है रिजेक्ट कर दूंगा, तो ऐसे सोच ही रहे थे। और अगले दिन उन्होंने बुलाया श्यामानंद प्रभु को और बोला कि देखो मेरे गुरु गौरीदास पंडित हैं और उन्होंने सख्य भाव के अंदर ही जो है कृष्ण की सेवा करना सिखाया है हमको, मैं भी वही करता हूं, मैं भी उसका प्रचार कर रहा हूं, लेकिन तुम ये गोपी भाव का क्यों वो करते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गौरीदास पंडित तो सुबल सखा हैं और सभी सखाओं का, सभी रसों का जो कल्बिनेशन है, जो पराकाष्ठा है, वो तो माधुरी भाव के अंदर है, गोपी भाव के अंदर है। तो ऐसे करके उन्होंने बोला, तो लेकिन हृदय चैतन्य को फिर भी बहुत गुस्सा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हृदय चैतन्य श्यामानंद प्रभु की खूब पिटाई करी ऐसे करके, और पूरे शरीर पे जो है उनके घाव हो गए, खून निकलने लगा, सब होने लगा, और सभी महंत वहां पर आए और बोला आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो श्यामानंद प्रभु जो थे ये बहुत ही नम्र थे, इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को जितनी कृपा प्राप्त हुई है केवल हृदय चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हुई है, और ये हृदय चैतन्य प्रभु की वास्तविकता में कृपा है कि मेरी ऐसी पिटाई कर रहे हैं वो। लेकिन हृदय चैतन्य बस अब आखिरी सोच रहे थे कि एक रात और सोचता हूं मैं, और नहीं तो कल से इनको अस्वीकार कर दूंगा। और फिर हृदय चैतन्य जो है रात को जब सोने लगे तो उनके सपने में कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जब सपने में आए और किस रूप में थे वो? चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर पे जो है घाव ही घाव, खून ही खून पूरा, और महाप्रभु की जो चादर थी वही पूरे खून से भरी हुई ऐसे करके पूरे बैक में। तो ये देख के हृदय चैतन्य को बड़ा आश्चर्य बना, बोला ये हालत किसने करी है आपकी? तो महाप्रभु बोलते आपकी कृपा से मेरी ये हालत हुई है। तो बोले कि आपने श्यामानंद, और श्यामानंद जो है मेरे बहुत ही जो है निकटतम पार्षद हैं, और लगभग मैं उनसे अभिन्न हूं। तो जब आपने उनकी पिटाई करी तो मुझे वो पिटाई अपने शरीर पर लेनी पड़ी। तो हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित को बिल्कुल समझ में आ गया ये ऐसे सॉरी हृदय चैतन्य को, और सुबह उठे वो और समझ गए कि श्यामानंद पंडित कौन है। और उनके हृदय में नहीं, वो तो वैसे ही खैर नित्य सिद्ध पार्षद लेकिन वो परिवर्तित हो गए। और फिर श्यामानंद प्रभु से मिल करके उनको स्वीकार करके वो कहां चले गए? वापस अंबिका कालना चले गए। अब एक और विशेष बात है इसके अंदर कि जब श्यामानंद प्रभु कनक मंजरी के रूप में राधा रानी से मिले थे, तो जब जाने लगे राधा रानी सुबह सका से मिलकर, तो राधा रानी ने उन्हें बोला, एक आज्ञा दी। क्या बोला? आप जाओ, ये समस्या की बात नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आप उड़ीसा में जाके रसिक मुरारी के साथ प्रचार करना, ऐसा करके। तो ये आज्ञा दी। इन्हें ये जानते थे रसिक मुरारी कौन है, लेकिन राधा रानी की बात पर पूरा विश्वास था कि समय आने पर यह बात बिल्कुल सिद्ध ठीक होगी। और फिर इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु और विख्यात हुए और भजन करते थे वो। और फिर क्या हुआ इसके बाद? अब जीव गोस्वामी ने आज्ञा दी इन तीनों को, क्या करो, आप सब गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर लेके जाओ और बंगाल उड़ीसा के प्रांत में सभी वैष्णवों को दो और इसका प्रचार करो। तो श्यामानंद को जाना नहीं चाहते थे वृंदावन छोड़ के, लेकिन फिर जीव गोस्वामी ने बोला कि राधा रानी ने आपको आज्ञा दी है उड़ीसा में जाके प्रचार करने के लिए, तो आप जाओ वहां पे। तो गए बड़े दुखी मन से, और जब गए तो रस्ते में किताबें चोरी हो गई बाण विष्णुपुर के अंदर। तो श्रीनिवास आचार्य वहां रुके, और ये दोनों नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित जो हैं ये आगे गए। और उसके बाद श्यामानंद पंडित जो इनका नेटिव प्लेस था, एक मुझे नाम नहीं लिखा मैंने उस जगह का, हाँ नॉर्थ उड़ीसा में था। तो उस जगह पे गए वो और देख, तो उन्हें पता लगा कि उनके माता पिता का देहांत हो गया है, तो थोड़ा सा देख के उन्हें दुख लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रचार करे रोका नहीं। और उस समय अब ये 50 साल के अंदर लगभग जितने भी साल हुए अभी 30-40 साल महाप्रभु के तिरुभाव के बाद और श्यामानंद प्रभु के बीच के अंदर महाराज, ये उड़ीसा जो प्रांत था यहाँ पे बहुत सारे शासक भी चेंज हुए महाराज प्रताप रुद्र के बाद में। तो उड़ीसा पठान रूल के अंदर आ गया, और वहां के जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही जो है, और जो पुरी का जगन्नाथ जी का मंदिर था उसमें पठान और मुस्लिम रूल जो मुगल लोग थे वो इंटरफेयर करते थे। तो ऐसे पॉलिटिकली भी और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से उड़ीसा प्रांत के अंदर भक्ति जो आध्यात्मिक लोगों में जागरूकता थी या रुचि थी वो बहुत कम हो गई, और उस समय बंगाल में भी कम हो गई थी कुछ हद तक। बहुत ही कम वैष्णव बचे थे ऐसा बताते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश वैष्णवों जो वैष्णव हैं वो वृंदावन में की ओर चले गए थे अधिकांश वैष्णव ऐसे करके। तो उस समय और सब प्रार्थना कर रहे थे कि उड़ीसा में कोई राजा फिर से आए जो कि इन मुगल और पठानों को हटा सके वहां से, और साथ में एक आध्यात्मिक लीडर भी आए, नेता भी आए, इस प्रकार के कोई आचार्य आए। वास्तविकता में ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसा हो। तो श्यामानंद प्रभु वहां पे आए, और जहां उनका नेटिव प्लेस था वहां पर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, और उनकी ख्याति तो वैसे ही विख्यात थी। और इसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने बहुत जो है मतलब जोर शोर से प्रचार करना शुरू किया, और बहुत ही सशक्त प्रचारक थे वो, और प्रचार कार्य बहुत आंदोलन बढ़ने लगा। और तब उन्होंने उस जगह को जो है अपने शिष्यों को, कई सारे शिष्य बनाए उन्होंने, और फिर वो और प्रचार करने लगे। तो ऐसे ही एक और जगह थी वहां पे दो, एक ब्राह्मण कुल के पति ब्राह्मण और उनकी पति पत्नी थे, तो उनकी संतान थी कौन? रसिक मुरारी। और उनका विवाह हो चुका था हालांकि रसिक मुरारी का, फिर रसिक मुरारी से जब मिले तो श्यामानंद प्रभु ने उनको भी दीक्षा दी, इन दोनों को, उन दोनों पति पत्नी को। और श्यामानंद प्रभु और रसिक का आनंद, इनकी जोड़ी बहुत प्रचार किया उड़ीसा के अंदर। और एक जगह थी जिसका नाम था काशीपुर, उड़ीसा के अंदर जगह का नाम था काशीपुर। तो उस जगह पे रसिक मुरारी जी ने बहुत प्रचार करना आरंभ किया। और जब हृदय उन्होंने श्यामानंद ने देखा कि इतना सफल प्रचार हो रहा है तो उन्होंने जगह का नाम भी चेंज कर दिया। क्या नाम रखा उन्होंने? एक गोपी जाना वल्लभ के विग्रह रसिकानंद प्रभु को दिए, रसिक मुरारी को, और उनकी उनको दिए, बोला आप इनकी पूजा करो। और बाद में उनकी जो वाइफ थी उनको उसका हेड पुजारी बनाया उन्होंने, प्रीस्ट। और फिर उस जगह का नाम रखा उन्होंने गोपी वल्लभपुर, उस जगह का नाम। अभी इस कौन में भी कई भक्तिविधान स्वामी मार्ग और ये शिला प्रभुपाद मार्ग ऐसे होते हैं, ये हरे कृष्णा लैंड, तो वैसे ही उन्होंने जगह का नाम कर दिया गोपी वल्लभपुर ऐसे करके। तो बहुत सशक्त उन्होंने प्रचार किया और इतना प्रचार किया कि, और फिर उस समय भगवान का ऐसा अरेंजमेंट था कि यहां अकबर के भी एक गवर्नर थे, ऐसा राज मान सिंह लिखा, अभी राजा मान सिंह थे या मान दूसरे मान सिंह है ये इसका जानकारी नहीं समझ में आ रहा था। तो इनको गवर्नर बनाया बंगाल का, और बाद में इन्होंने बहुत अच्छा नेगोशिएशन करके एटलीस्ट जगन्नाथ मंदिर को पठान और मुगल रूल से हटा लिया था। तो अब जो है जो जगन्नाथपुरी था वहां पर भी अच्छा प्रचार हो रहा था। और तो लेकिन फिर अचानक से कुछ रूल हुआ तो फाइनली ये जो गवर्नर थे इन्होंने युद्ध करके सारे पठानों को उड़ीसा से हटा दिया ऐसे करके। तो पॉलिटिकली उनको पूरा गवर्नर का गवर्नमेंट का सपोर्ट था, तो बहुत जोर शोर से इन्होंने प्रचार किया श्यामानंद पंडित और रसिक मुरारी जी ने। और इसके बाद ये फिर श्यामानंद प्रभु दो बार यहां वृंदावन गए और एक बार रसिक मुरारी को भी साथ लेके गए और फिर वापिस आए, उन्होंने और प्रचार किया। तो इस दौरान क्या हुआ, एक जगह पे वो गए, उस जगह का तो, और वहां पे श्यामानंद प्रभु बहुत बड़ा संकीर्तन कर रहे थे, और संकीर्तन कर रहे थे तो मुस्लिम जो वहां का जो भी था राजा या गवर्नर जो भी, तो वो वहां पे आया और वो सब मुस्लिम सेना को लेके आया और मृदंग तोड़ने लगे, भक्तों की पिटाई करने लगे। तो जब ऐसा करने लगे तो श्यामानंद प्रभु और जोर से कीर्तन करने लगे। तो ठीक है, उस दिन तो भक्त चले गए, फिर अगले दिन और ही बड़ी संख्या में श्यामानंद प्रभु भक्तों को लेकर आए, संकीर्तन करने लगे, और ये मुस्लिम लोग फिर आए, फिर उनको पलटना शुरू किया। तो तुरंत देखा, क्या देखा कि जितने मुस्लिम थे सब जो है खून की उल्टियां करने लगे और उनके जो दाढ़ी और बाल जलने लगे, ऐसा लगा उनको जल रहा है। तो सब भाग गए श्यामानंद प्रभु की शक्ति देखते हुए। और तीसरे दिन और भी बड़ा संकीर्तन निकाला श्यामानंद प्रभु ने। और इस दिन उस जो व्यक्ति का नाम था शेर खान था, जो लीडर था उनका, तो ये शेर खान श्यामानंद प्रभु से मिलने के लिए आया और उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बोला कि कल मेरे रात को एक बड़ी विशेष बात है, कल जब हम आपके संकीर्तन भंग करने आए थे तो हमें सबको खून की उल्टियां होने लगी, हमारी दाढ़ी और बाल जलने लगे ऐसे करके, लेकिन कल रात को मेरे सपने में कौन आया? अल्लाह आए। और उन्होंने बोला कि जिसको तुम अल्लाह के रूप में करते हो ये लोग भी उसी की, मैं वही हूं जिनकी ये पूजा करते हैं। और फिर अल्लाह ने अपना क्या किया, सुनहरे रंग का मेरे को रूप दिखाया। कौन थे वो? गौरांगा। और तब उन्होंने बोला कि मैं तुरंत जाके जो है आपसे आपका शिष्य बन जाऊं। और फिर श्यामानंद प्रभु ने शेर खान को अपना शिष्य बनाया और उस पूरे जगह को भी जो है वैसे प्रचार किया। तो इस प्रकार से, और फिर इस दौरान वो भी आए, इनके जो गुरु हृदय चैतन्य थे वो भी जगह पे आए। और तब भगवान की ऐसी कृपा थी श्यामानंद पंडित के ऊपर कि बहुत सारे इनके शिष्य थे और जो बहुत ही जिम्मेदारी उठाने वाले शिष्य थे, ऐसा में लिखा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे सभी शिष्यों को जिम्मेदारी देकर के श्यामानंद प्रभु जो है वृंदावन भी गए थे। और इस दौरान कालना से इनके गुरु हृदय चैतन्य आए और इनके दो मुख्य शिष्य थे रसिक मुरारी और एक थे दामोदर। तो ये चार लोग, रसिक मुरारी, दामोदर, श्यामानंद प्रभु और हृदय चैतन्य, ये चार जो हैं उड़ीसा के अंदर बैठ करके और कृष्ण गाने बहुत कथा किया करते थे ऐसे करके। फिर अंबिका कालना वापस चले गए हृदय चैतन्य, इनको बहुत आशीर्वाद दिया और रेगुलरली ये टच में रहते थे उनके, अपने दूतों को शिष्यों को भेज करके हृदय चैतन्य के साथ में, और साथ साथ किसके साथ? श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम ठाकुर के साथ रेगुलर इनका पत्राचार रहता था। और खेतुरी के फेस्टिवल में भी गए, जो पहला गौर पूर्णिमा उत्सव हुआ वहां पे भी गए हैं। और इसके बाद श्यामानंद पंडित जो हैं इनको एक समाचार मिला। क्या समाचार मिला? कि हृदय चैतन्य ने अपनी जो है भौम लीला अप्रकट हो गए हैं। तो उनको बहुत वेदना हुई कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, विरह महसूस कर रहे थे, तो उनके तिरुभाव के उपलक्ष्य में उन्होंने जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, लेकिन फिर भी सहन कर पा रहे थे, प्रचार कर जारी रखा उन्होंने। और फिर क्या हुआ, उन्हें एक और समाचार मिला। क्या समाचार था वो? कि इनके शिष्य दामोदर हैं, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया है। तो ये सुन के वो सहन नहीं कर पाए और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकली टर्मिनली इल हो गए, लाइक दैट जो है बीमार पड़ गई है स्वास्थ्य, और कितने भी कोई भी डॉक्टर कविराज वैद्य इनको ठीक नहीं कर पाए, और अंत में इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया ऐसे करके। और जाने से पहले भी ये अंत समय तक बिल्कुल जोर से प्रचार करते रहते थे। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, लेकिन बहुत श्योर नहीं है कि वो इन्होंने लिखी है कि नहीं लिखी है ऐसा करके, ये अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, क्लैरिटी नहीं है। और रसिक मुरारी जी ने भी इनके बारे में इनका जीवन चरित्र लिखा है, और श्यामानंद पंडित ने आप कुछ कई श्लोक के 100 श्लोक ऐसे एक शतक लिखा है अपनी राधा रानी से जो मीटिंग हुई, या ललिता सखी राधा रानी से मीटिंग हुई उसके बारे में। और फिर इन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया कि इनके जाने के बाद रसिक मुरारी जो हैं पूरे श्यामानंद संप्रदाय के आचार्य होंगे, और जो भी उनको डिसोबे करेगा उन्होंने बोला कि वो वास्तविकता में मेरे से विद्रोह कर रहा है। और इस प्रकार से जो है श्यामानंद पंडित ने शरीर छोड़ा और अंत समय तक प्रचार करते रहे। तो इस प्रकार श्री श्यामानंद प्रभु की, श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महोत्सव की। तो इनके जीवन से 2-3 हमको कुछ शिक्षा, बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं ऐसे, लेकिन एक दो चीज बहुत मुख्य रूप से समझ में आती है, वो है जिस प्रकार से हृदय चैतन्य ने वो समझ एक प्रकार से एक्सटर्नल रूप से नहीं समझ पाए कि श्यामानंद प्रभु का जो भाव है वो किस प्रकार से है। ऐसे ही हम देख सकते हैं जब हम भक्तों के समाज में डीलिंग करते हैं तो अनेक भक्त अनेक भावनाओं से, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं से, भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों से भगवान की सेवा करना चाहेंगे, है ना। और हो सकता है हमारा तरीका उनका तरीका मैच ना करे, तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो तो अकोमोडेट कर लेते हैं, बट हमको भी दूसरे भक्तों को समझना कि हमको समझ सके, उनकी भावना को समझ सके, क्योंकि कृष्ण भाव ग्राही जनार्दन है, तो हम भी उनकी भावना को समझ सकें और बाह्य रूप से एक्सटर्नल रूप से उनको जज ना करें। तो ये एक शिक्षा मिलती है कि वैरायटी ऑफ डिवोटीज, वैरायटी ऑफ मूड्स, वैरायटी ऑफ सर्विसेज, अनेकों अनेकों प्रकार से व्यक्ति जो है कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, और हमें जज नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान का हर भक्त के लिए कुछ ना कुछ विशेष प्लान होगा ही होगा, तो समय आने पर मैनिफेस्ट होगा इस प्रकार से, है ना। लेकिन साथ ही साथ हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि कहीं ऐसा लगे हम सब अपने अपने तरीके निकाल दें और बोले मुझे भी ललिता सखी ने आके सपने में बोला है, तो वो ठीक नहीं है, है कि नहीं। यदि हम श्यामानंद पंडित के स्तर पे हो और ललिता सखी या राधा रानी की इस प्रकार से डायरेक्ट कृपा में प्राप्त हो तो हम एक संप्रदाय भी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हमें अत्यधिक रूप से अपने गुरु के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी फ्लोटिंग। किसी व्यक्ति को जो है जैसे बोलते हैं ना, बिना पैंदे का लोटा नहीं होना चाहिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति के अंदर उसे अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। जिस प्रकार से श्यामानंद पंडित भी कहते थे कि हृदय चैतन्य की कृपा से ही मुझे सब प्राप्त हुआ है, जो भी कृपा प्राप्त हुई है, हम भी रोज गाते हैं जहां र प्रसाद ए भाई ए भव तरिया कृष्ण प्राप्ति है जहां है ते। तो ये जानना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हम प्राप्त हो सकते हैं, शुड वेरी फेथफुल ऐसे करके हमें बहुत निष्ठावान होना चाहिए कि जो हमारे गुरु ने बोला है। अगर हम मान लीजिए किसी के आध्यात्मिक गुरु उतने उन्नत स्तर पे नहीं भी हैं तो भी भगवान जो है उनको पूरी कृपा प्राप्त करेंगे और ऐसे शिक्षा गुरु प्रदान करेंगे जो जिनसे वो शिक्षा ले सके। और यदि हम किसी और शिक्षा गुरु से या अनेक गुरु शिक्षा ही प्राप्त करते हैं तो हमें अपने आध्यात्मिक गुरु से, दीक्षा गुरु से पहले वेरीफाई करना चाहिए उस चीज को, क्योंकि इससे पहले ये पास्ट टाइम हुआ जीव गोस्वामी हमेशा दुखी कृष्णदास के बारे में रेगुलरली रिपोर्ट भेजते थे, किसको? हृदय चैतन्य को। ये एक बहुत विशेष बात है। और जीव गोस्वामी ने बोला मैंने कभी भी जो है इनको अपना शिष्य ग्रहण नहीं किया है, ये मैं शिक्षा जरूर प्राप्त करते होंगे, मैं इन्हें शिक्षा प्रदान करता हूं, शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता हूं, लेकिन ये मेरे डिसाइपल नहीं है ऐसा करके। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनको, विशेष के जो दीक्षा गुरु हैं, हम उनका हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, उनके आज्ञाओं का, उनके इंस्ट्रक्शंस का। और जो वो ही हमारे प्रथम शिक्षा गुरु हैं और उनकी लाइन में कोई शिक्षा गुरु है तो हम शिक्षा जरूर ग्रहण कर सकते हैं उनसे, लेकिन कुछ भी फॉलो करने से पहले हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए और विशेषकर जो हमारे स्पिरिचुअल थॉटीज हों उनके लिए हमें बिल्कुल फेथफुल होना चाहिए जब तक वो बोनाफाइड हो। ऐसे करके कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारी पिटाई भी क्यों ना करें। जैसे श्यामानंद प्रभु ने पिटाई करी लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये कृपा है वास्तविकता मेरे आध्यात्मिक गुरु की। और तीसरी बात, एक और भी चीज है कि भगवान जो है प्रत्येक भक्त को अलग अलग प्रकार की योजना होती है भगवान के लिए, किस भक्त को किस प्रकार से नियुक्त करें। लेकिन राधा रानी के प्रत्येक साक्षात दर्शन करने के बाद भी उन्होंने क्या आज्ञा दी श्यामानंद प्रभु को, आप जाओ और प्रचार करो। और कहां प्रचार करो, एक प्रभुदादा देश भी दिया कि आप यहां उड़ीसा में जाके इनके साथ प्रचार करो, है कि नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जितना प्रचार कार्य हो रहा है, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी या उनके शिष्यगण जो उनके प्रतिनिधि हैं प्रचार कार्य कर रहे हैं, तो वो सब राधा रानी की अरेंजमेंट से ही हो रहा है। उनका अरेंजमेंट है कि इस एरिया में प्रचार हो, यहां भक्त बने, यहां जीवों का उद्धार हो, तो जो वहां के लोगों का उद्धार हो पा रहा है। और कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक आचार्य वहां पर जाते हैं और अपने सशक्त प्रचार से लोगों का उद्धार करते हैं। और ऐसे प्रतिनिधि जो हमें आज्ञा दें कि हमें प्रभुदाता देश दें, हमें वहां पर अडिग रहना चाहिए। और वहां बहुत कठिनाई भी आएगी श्यामानंद प्रभु को भी, क्योंकि उस समय मुगल रूल था तो बहुत अधिक अपमान सहन करना पड़ा। ये उच्च कुल में नहीं थे तो स्मार्ट ब्राह्मणों से भी इन्हें जो है दिक्कतें आई, इनके बाद अटैक्स भी हुए, ये भी ऐसा वर्णन आता है। लेकिन फिर जब वो राजमानसिक आ गए तो उसके बाद तो ठीक हो गया, लेकिन उससे पहले इनको भी संघर्ष सहन करना पड़ा, तो दिक्कत आए। लेकिन प्रचार कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, और जो भी प्रचार कार्य हो रहा है हमारे आध्यात्मिक गुरु में हमें आदेश देते हैं वो वास्तविकता में राधा रानी के थ्रू ही आ रहे हैं। जैसे हम रोज गाते हैं, साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्र उक्त सता भाव यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरुवश चरणारविंदम। तो एक्चुअली जब ये लीला हुई तो इसके अंदर ने बोला कि सपने में आए थे, और हृदय चैतन्य ने क्या बोला कि सपने सब झूठ होते हैं देते हैं। तो ऐसे एक बार ही हुआ कि मुझे याद नहीं कौन आचार्य थे, तो उन्होंने जाके अपने गुरु को बोला कि आप मेरे सपने में आए थे, तो व्हाट आई शुड डू यू नो एंड यू गेव मी दिस इंस्ट्रक्शन। ही सेड दैट इज वेरी नाइस इफ आई केम इन अ ड्रीम एंड गेव यू इंस्ट्रक्शन, बट एज लॉन्ग एज आई एम फिजिकली प्रेजेंट यू कैन कन्फर्म फ्रॉम मी। जब तक मैं प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पे हूं तो आपको सपने की आज्ञा पालन मत करो, प्रत्यक्ष रूप से पूछ लो, है कि नहीं। तो हमें प्री मेच्योर स्टेज पे फर्स्ट क्लास डिसाइपल नहीं बनना चाहिए कि हाँ मुझे गुरु के हृदय में जो है सब पता है, बेटर टू फॉलो व्हाट गुरु सेज, कन्फर्म कर लेना चाहिए। बेटर टू बी एन ऑनेस्ट सेकंड क्लास डिसाइपल देन टू बी एन इमेच्योर फर्स्ट क्लास डिसाइपल, है कि नहीं। तो अच्छा है कि हम द्वितीय श्रेणी के भक्त बन जाएं, जो गुरु जो बोले वही करें। वैष्णव सेवा का मतलब जो पानी मांगे तो पानी दीजिए, दूध मांगे तो दूध मांगे, ये नहीं कि पानी मांगे तो छाछ दें उन्हें, है कि नहीं। तो ये हमें एक शिक्षा मिलती है उनके जीवन से। ये कुछ थॉट्स ऐसे श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभावती थी कि तो किन्हीं भक्तों ने कोई टिप्पणी या कोई एक प्रश्न या कोई एनी कॉमेंट्स। प्रभु जी का प्रश्न है कि इतने नित्य सिद्ध पार्षदों के बीच मिश्रण श्रेणी हो गई, इसे प्रैक्टिकली हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो मिश्रण श्रेणी हो सकती है, बहुत सारी होंगी भी, हो सकता है हमारे सुपीरियर्स के अंदर मिश्रण श्रेणी हो सकती है, हमारे दीक्षा गुरु और हमारे लोकल अथॉरिटीज में मिश्रण श्रेणी हो सकती है। बहुत इसका प्रैक्टिकल तो यही है कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें जो है बुद्धिमान भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए, और साथ साथ जो हमारे अथॉरिटीज हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं उनके प्रति हमेशा फेथफुल और लॉयल रहना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है कि जब नित्य सिद्ध पार्षदों के बीच में ऐसा हो सकता है तो क्या हमारे बीच में नहीं हो सकता है, है कि नहीं। अगर दो व्यक्ति होंगे तो उनके विचार में मतभेद होगा ही होगा, और प्रभुपाद जी कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मीन्स वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, वी आर नॉट मायावाद, वी आर नॉट वन, वी आर ऑल डिफरेंट, ऐसा है। तो ऐसा मतभेद तो होगा ही होगा और हो भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, और नित्य सिद्ध पार्षदों के बीच में भी ऐसा डिफरेंस ये हमें दिखा रहा है कि हाँ ये मतभेद हमारे यहां भी हो सकता है और होता भी है, हम देखते भी हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इससे हमारी श्रद्धा नहीं डामाडोल होनी चाहिए, वी शुड बी फेथफुल एंड इंटेलिजेंट, वी कैन यूज कॉमन सेंस, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभावती की, गौर प्रेमानंद।